તારીખ 13/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 689 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 24.
फिर जिसको कुटुंबादि संबंध स्नेह से मूर्छा की हो, मूर्छा की हो मतलब अपनत्व हो, खोटापन हो, मारो दिक्रो कुटुंब स्नेह, कुटुंब प्रेम, कुटुंब राज, ऐसे मूर्छा की हो उसके सहवास में सानिध्य में रहे हुए हो, साथ में रहे हो, साथ में रहना हो, बना हो, उसके प्रति कोई आश्रय भाव न रखी हो, फिर लड़का बड़ा हो जाएगा, कुटुंब परिवार का व्यवहार इसके पर आएगा, हम कुछ निवृत्त हो जाएंगे, इतना इसका भी लाभ मिलेगा, ऐसा कोई आश्रय भाव न रख लेगा क्या? उसको तो ज्यादा खेद बिना स्वार्थ का होता है, कुछ न कुछ आशा अपेक्षा एक दूसरे से परिवार में भी लोग रखते हैं, तो उसमें ऐसा निधन हो जाता है उनको, और दुख होता है। उसको खेत बिना कैसे रहेगा? इस संसार में मनुष्य प्राणी को जो दुख का अकथ्य प्रसंग प्राप्त होता है, उस अकथ्य प्रसंगों में से यह एक बड़ा दुखदायक प्रसंग है, दुखकारक प्रसंग। बहुत से दुख के कारण बनते हैं, इसमें कुटुंबी जन का निधन होता है वो विशेष दुख का कारण, और उसमें भी युवावस्था में कोई देर याद करता है तो कहीं को तो समाधान ये कोई मरने की उम्र थी क्या, कोई बुढ़ा मर जाता है कोई बात। मैंने ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, किसी की मत में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे भी हो गई वैसा हम नहीं हो गए वो समाधान तो अकच्छ दुख होता है। उस दुख को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, कथन नहीं कर सकते, तो अकच्छ दुख ऐसा होता है। बहुत से प्रसंग में ये सबसे बड़ा प्रसंग है अकथ्य दुख का। ये बड़ा खेदकारक प्रसंग है, दुखकारक प्रसंग है। इस प्रसंग में यथार्थ विचारवान पुरुष शिवाय सर्व प्राणी विशेष दुख को प्राप्त होता है। ज्यादा दुख किसको होता है? जिसकी विचार शक्ति कम है। विचार शक्ति मैंने क्या, आत्महित और अहित के विषय में अपने जो प्रयोग है, उस विषय में जिसकी विचार शक्ति कमजोर है या नहीं है उसको ज्यादा दुख होता है। ऐसी विचार शक्ति होती है तो उसको दुख कम होता है या तो उसको समाधान मिलेगा। पहला समाधान तो इस प्रकार होने योग्य है कि कोई भी जीव था तो संसार परिक्रमण के चक्कर में हमारे संयोग बना गया, उसमें अपनत्व करके अपनापना करके जो मूर्छा की है और इस मूर्छा का रस हमने वेदा है, ये दुख का कारण है। दूसरा कोई दुख का कारण है? फिर से कोई विचारवान जीव को भी दुख तो हो जाएगा, उस निधन होगा, दुख होगा, ये चल गया, अब नहीं है, लाश पड़ी है, सब पड़ा है, फिर भी ये नहीं है, ये पक्का हो जाता है, इधर दुख चालू होता है, आंखों का चालू होता है, अरे रे चला गया, अरे रे चला गया, कोई भी सदस्य हो उसको पता। अब विचारवान जीव को ऐसा विचार आ सकता है, विचारवान है उसको, ये दुख होने का मुझे क्या कारण है? कि जब तक इसके साथ में रहे, यहां तक इसके साथ में रहे, उसमें जो अपनापन का मीठा रस इसको कहते हैं, अच्छा हुआ, अच्छा लगा, ऐसे मिठास का रस जितना होगा है भोजन किया है, इसका रिएक्शन है। हमारा तो मृत्यु नाम तो डेली अखबार में पढ़ते ही हैं, कोई मृत्यु का समाचार से दुख नहीं है, लेकिन अपनापन है उसमें, यही दुख का कारण है। और वो अपनापन तीव्र रस से लिया है, उसका दुख दिया जाता है। फिर तो कहा कि संसार में तो किसी को दुख नहीं चाहिए,
तो व्यवहार क्या करना,
कोई भी कोई बात करेंगे, कोई भी मरे किसी को दुखी नहीं होना है क्या? मरने से भी किसी को दुखी नहीं होना है, इसलिए कृत्रिम इलाज कर लेते हैं, ये बार बार फिर वगैरह है, या आगे से कोई बीमारी लंबी हो या पता चल जाए कि अभी नहीं बचने वाला है तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चालू हो, तो ये तो होने वाला है, सबको होता ही है, इसका इलाज है ही नहीं, इसका इलाज नहीं, इसका क्या कर सकते हैं, वो है वो है वो सब आगे पीछे कृत्रिमता बनाए रखता है जी, उस दुख को हल्का महसूस करता है, और हल्का करने के लिए ये सब करते हैं, क्योंकि उसके मरने से भी दुख नहीं भोगना है हमको। क्या जीव की हालत है, तो कोई मर गया तो मर गया, दुख नहीं भोगे ऐसा कोई उपाय बनाओ, बस ऐसा उपाय करते रहो। देखो ये संसार में जीव को स्वार्थ कैसा होता है, हर जीव को कैसा स्वार्थ, तो इसके लिए विचारवान जीव को तो अपना जो जीवन है कि इस व्यक्ति के साथ हम कैसे जिए, हमने अपनापन का कितना रस लिया था, जितना तीव्र रस लिया था उसका उसके अनुपात में रिएक्शन आए बिना नहीं रहेगा, ख्याल रहा है। इसलिए अब बाकी के जीवन में हम हमारा जीवन कैसे जीना उसी समझ लें कि भविष्य में भी ऐसा दुख दोबारा नहीं, ऐसे दुख प्रसंग में हम हमारी आत्मस्वस्थता आत्म संतुलन बनाए रखें। तो उसमें तो एक बात साफ है, संसार परिभ्रमण करते हुए अनेक जीव है, अनंत जीव है, इसमें प्रारब्ध वशात पूर्व कर्म योग से कुछ न कुछ जीवों का संयोग होता है, और वो भी लिमिटेड पीरियड उसका होता है, इसका भी योग होता है। उसमें जो रस लिया वो दुख का, दुख का कारण तो भिन्नत्व समझ लिया कि ये कोई अपना है नहीं, कोई पराया भी नहीं, कोई अपना भी नहीं, सब जीव मात्र भिन्न भिन्न है, और हमारे हमारे हमारा जीवन को हमारे आधार से हमारे अवलंबन से शांति से जीने की जो कला है वो हमको प्राप्त करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये प्रश्न तो बनने वाले हैं ही, अगर हम ऐसे जीने की कला नहीं प्राप्त करते तो ये प्रश्न तो बनने वाले हैं, ये दुख का कारण बनेगा ही बनेगा, और वो कौन चाहता है, कोई चाहता है नहीं ऐसे। इसलिए हम एडवांस में पहले ही इसकी तैयारी कर लें तो हमारा जो आत्म शांति है वो बराबर बनी रहेगी, वरना दुख तो होगा उतना ही नहीं, उस दुख के काल में जो नया कर्म बन जाएगा तो उतना ही दुख का कारण बनेगा आगे जाकर, शायद इससे विशेष दुख का भी कारण बन सकता है। वर्तमान दुख और भविष्य में भी इसके फल में
ये धार्मिक जीव होने से
जी
वो जीव जो है वो धार्मिक जीव होने से क्या क्या
साधर्मी होने से, जैसे कुटुंब वाला कुटुंब परिवार में हो या नहीं हो कोई भी साधर्मी जीव जाने से भी दुख होता है, क्योंकि ये वियोग का दुख है। एक साधर्मी तना का योग था, हमें एक मार्ग में चलने से हमारा आपस में अनुराग था, प्रेम था, तब वियोग होने से ये प्रश्न चला गया, वो प्रश्न चला गया, सत्संग का जो भी है कुछ भी वो प्रसंग करेगा तो वो प्रसंग जाने से थोड़ा दुख लगता है, ये कारण दुख का कारण, दूसरा वो सांसारिक नहीं रहता, ये कारण दुख का कारण।
वैराग्य वृद्धि झुकाव होना चाहिए, वैराग्य तरफ जाना चाहिए।
हाँ तो उसका वैराग्य आएगा, नहीं चाहते हुए भी संयोग का तो योग होता ही है, ये तो भावना नित्य भावना शरण भावना ये तीन भावना क्या है
असंभावी
भावना को भाते हैं, उस प्रकार के विचार में साधर्मी जन चले जाते हैं। तो उसमें वो सांसारिक दुख होता है, इस प्रकार का दुख नहीं होता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। वैराग्य का प्रसंग बनता है और वैराग्य आता है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा आत्महित में और लगने का एक निमित्त बन जाता है, क्या आत्महित में जोर से तेजी से हम हमारा समय खराब किए बिना, बर्बाद किए बिना, थक गया, इस प्रकार की बात मतलब जैसे कुटुंबी जन का भी योग होता है वैसे साधर्मी जन का भी योग होता है, तो उसका वैराग और उसके वैराग थोड़ा अपनत्व महत्व का दुख विशेष होता है, दुख की क्वालिटी अलग है, और साधर्मी जन का धर्मात्मा का भी योग होता है, गुरु जन का भी योग होता है, हमारा आत्म कल्याण का एक निमित्त का भी योग होता है, इसलिए भी खेत तो होगा, लेकिन वो अन्य प्रकार का दुख है, ऐसा ना दुख होता है उस प्रकार का, और वो वैराग्य में जाता है, वैराग्य तरफ जाता है वो, और आत्म कल्याण में अधिक बने अग्रेसर होने का विशेष कारण, ऐसा एक कहना इसमें सब प्रकार और वास्तव में है, उसके वो तो बहुत दुख का कारण बनता है, फिर भी विशेष वैराग्य से उसका जो फल है वो तो वैसे ही जाता है, फिर विशेष वैराग्य से अपना आत्म में और तेजी हो जाए और आगे बढ़ जाए, ऐसा ही होने से रिजल्ट जो है फल है परिणाम है वो उस प्रकार से यथार्थ विचारवान पुरुषों को तो वैराग्य विशेष होता है, वैराग्य विशेष होता है, वैराग्य माने क्या, कहीं भी संसारी प्रसंग में निरस्त आ जाना, सभी संसारी प्रसंग में निरस्त आ जाना, कहीं रस नहीं आवे,
बात छोटी लगती है कि बात छोटी लगती है लेकिन है थोड़ा टफ,
रस
को बनाना पड़ेगा,
रस छूट जाए क्या, रस छूट जाए, यथार्थ विचारवान पुरुषों को वैराग्य विशेष होता है, संसार का असरणपणा अनित्यपणा और असारपणा विशेष यही भावना में आएगा, जो बार भावना है इसमें है चार भावना, अन्यत्व भावना, संसार भावना, असरण भावना, अनित्य भावना, ये भावना है का विचार है, ये भावना थी, ये इसका मूर्तिमत प्रसंग आ गया है, ये प्रसंग से ही इसकी प्रतीति आ जाती है कि ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है, जब ये ऐसा ही संसार का स्वरूप है संयोग वियोग वाला, तो हमको जल्दी से जल्दी हमारे आत्म कल्याण में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो घूम फिर के बाद यहाँ आ जाए, कैसा भी विकल्प अनेक अनेक प्रकार का भावना अनुसार आए, अनेक न्याय, अनेक प्रकार के विचार विचारवान जीव को आएंगे, लेकिन उसका जो टोटल है ये टोटल वही है कि हमको जल्दी से जल्दी आत्म कल्याण कर लेना, शीघ्रता से कर लेना, जो शीघ्रता वाली बात मुमुक्षु की भूमिका में चालू होकर के साधक दशा के अंत तक रहती है, उसमें ऐसा एक प्रसंग और बूस्टिंग देता है। क्या है? वैसे तो मुमुक्षु को शीघ्रता से आत्मकल्याण करने का अभिप्राय भी है, अपनी शक्ति के अनुसार उसका प्रयास भी है, और जब ऐसा प्रसंग बनता है तो उसको एक धक्का और लगता है। तो इनके लिए दुख वास्तव में दुख का कारण नहीं है, वास्तव में गुस्सा सोचते हैं। संसारी जीवों को दुख का कारण, और जो योग्यतावान है ये भी एक प्रकार की प्रतिकूलता ही समझो कि अनुकूलता चली गई, और प्रतिकूलता ही किसी न किसी प्रकार है, और वैराग्य विशेष होकर के पुरुषार्थ प्रतिकूलता अनुकूलता नहीं, योग्यतावान बस। जो योग्यतावान नहीं है उसको इतना दुख होगा नया कर्म तीव्र हो जाएगा, नया कर्म स्थिति। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो पहले से ही सतर्क है, जो पहले से ही कुछ तैयार है, उनके परिणाम में ये गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसे प्रसंग में आपको शांति तो बनाए रखेगा, लेकिन अपना काम करने में उसको एक और निमित्त पड़ जाएगा, आत्मकार्य में एक और ऐसा उसका कुदरती जो वलन है वलन है इस प्रकार का दिखा। और विशेष दृढ़ होता है, अपना पुरुषार्थ भी दृढ़ होता है, परिणति भी दृढ़ होता है, भावनाएं भी दृढ़ होती है। विचारवान पुरुषों को तो यह खेद कार्य प्रसंग मूर्छा भाव से खेद करना यह मात्र कर्म बंधन का हेतु भाषित। विचारवान को स्पष्ट लगता है कि अगर हम अपना तो के कारण से दुखी होंगे तो जो हो गया वो तो हो गया, उसमें तो फिर होने वाला नहीं है, लेकिन नया कर्म बंधन हमको नुकसान हमको अभी तो दुखे होंगे, भावे में ये दुख का ही इसके लिए उनका जो दुख है वो उस तरह से नहीं चलेगा, कहीं रस नहीं लेगा, विरागा विरक्तता हो जाएगी वो अलग बात है, विरक्तता होना अलग बात है, लेकिन उसको उस प्रकार का दुख नहीं होगा तो तीव्र कर्म बंधन होगा। और वैराग्य रूप खेद से कर्म संघ की निवृत्ति भाषित होती है, और वह सत्य है वैराग्य रूप खेद से कर्म संघ की निवृत्ति भाषित होती है। जो वैराग्य है उससे कर्म संघ की निवृत्ति, मैंने जो कर्म का उदय संघ मैंने उदय है कर्म का उदय है निर्जरा में ले जाए, ज्ञानी होगा पुरुषार्थवान होगा तो वैराग्य से वो अपने आत्मा प्रति उसके परिणाम बन जाएंगे, तो कर्म के उद्देश्य की निवृत्ति उसको और उसको लाभ का कारण लाभ का नहीं ऐसे बहुत वैराग्य में हार में थोड़ा बहुत भी इनका जो योगदान था वो भी ऐसा वैराग्य बन गया। आज से तो हम दूसरा कोई हमारा ज्ञान ध्यान के अलावा कोई काम में हमारा चित्त लगने वाला नहीं, हम कहीं जुड़ेंगे नहीं, हमारा हमको कहीं भी लगाना भी नहीं, हमको छोड़ देना, हर जगह से हमको
किसी भी प्रकार के जो सामूहिक प्रसंग है और वह सत्य है, ऐसा करना योग्य है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा अच्छी बात है। संसार में कुछ भी व्यवहार की गिनती है उतनी अल्पकालीन गिनती है, उतनी अल्पकालीन गिनती है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। एक कल्पना जिनको होती है प्रसंग में शामिल होते हैं, कोई भी प्रसंग है उसमें शामिल होते हैं, तो हमारी भी कोई स्थान है, कोई वैल्यू है, तो हमारी उपस्थिति की कोई नोंद होती है, वो भी थे। ऐसे जो प्रकार है ये सब कल्पना मात्र है, कुछ नहीं है, सब कल्पना ही कल्पना। लोग सन्ना के बस ऐसे मकान मालिक रमेश भाई इधर थे ना, तो दिन निवृत्ति में आए करीब 12 दिन, बीच में एक प्रश्न था शादी का, तो थोड़ा ये दिन चला थोड़ा, आप नहीं थे क्यों, आपका तो इतना संबंध है, आप नहीं थे क्या, आप क्यों नहीं थे, ऐसे ऐसे टेलीफोन से बोल दिया छोटा भाई को जाना है, हम नहीं जाएंगे, जबकि हमारा हम भी मेरे होता तो हम ही जाते, वो नहीं जाते, हमको हमारा एक महत्व वहां हासिल होता है छोटे भाई का। विचार किया कि इधर आए हैं, ये सब बात हो रही है, चर्चा हो रही है, सब संचार में लगे हैं, फिर वो चर्चा चल रही है, ये सब कल्पना है। मेरी उपस्थिति का महत्व, ये सब जीव की कल्पना बेकार है। अपन नहीं होते तो ये संसार ऐसा ही चलने वाला है, हमारा भी यहाँ रहने का तो लिमिटेड पीरियड है, बाद में हम नहीं होंगे, हमारे सब सगे संबंधी जिनके प्रसन्न तो होंगे ही होंगे, क्या हमारे नहीं होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हम स्वयं बुझते हैं। जो कहते थे ज्यादा हो तो हंसरू ऊंचो करे क्या बड़द आवी जाए, तो बैल होता है ना उसको जोड़ते हैं गाड़ी के साथ, गाड़ा बोलते ना आपके बैलगाड़ी के साथ बैल को जोड़ते हैं, तो अगला वो ऊंचा करे, इसका मालिक बैलगाड़ी का मालिक जिसको ऊंचा करे अंदर आने के लिए, तो उसको बुलाना नहीं पड़े, तो स्वयं ही आ जाता है, घुस जाता है कि बैल स्वयं घुस जाता है बंधन के लिए कि बांध दो मुझे। ऐसे कोई प्रसंग बनता है तो कोई बुलाया नहीं बुलाया, बुलाए तो भी उनको खुद को ऐसा मन रहता है कि मुझे जाना चाहिए, खुद बंधन में पड़ना चाहता है, जीव की वृत्ति ऐसी है कि खुद बंधन में पड़ना चाहता है, तो उत्साह से उलझ करके वो पड़ता है। ऐसा वैराग्य प्रसंग बनने से ये सब छूट जाता है। पहले के जमाने में जो धार्मिक जन थे उनका तो बहुत ऐसी बात थी, कई लोगों का ऐसा सुनने में आता है कि जब से इनके घर में ये प्रसंग बना है आदमी कभी मीठा नहीं खाया, मिठाई छोड़ दिया, जब से इसके घर में वो प्रसंग बना है उसमें सब व्यवहार करते हैं, कहीं शादी हो गया तो किसी प्रसंग हर्ष के समय प्रसंग को वो टालते हैं, ऐसा कहेंगे रस आ जाता है, विरक्तता आ जाती है। देखो अनित्यता कैसी है, हमको नया कर्म बंधन के लिए एक लिमिट मिल गया, एक बहाना मिल गया, चलो अब छोड़ना, वरना तो लोग कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन अब तो बहाना मिल गया, हमारा तो पहले से अभिप्राय नहीं था, तो
एक निमित्त और मिल गया, दोनों छूट गया, निदान छूट गया। मूर्छा भाव से खेद करने से भी जो समधि का वियोग हुआ है उसकी प्राप्ति तो होती नहीं। भी अपनापन कर रहे हैं, अब चला गया फिर भी अपनापन नहीं छोड़ता है। फिजिकल पोजीशन तो वो बने कि वो अपना रहा नहीं, फिर भी अपनापन नहीं छोड़ता है। क्या बात है, दुख क्यों होता है, अपनापन ऐसे दुख होता है। ये अपने को छोड़ने का प्रसंग है, उसमें भी जो अपने को नहीं छोड़ता है ये अविचार में ये अविचार दशा का फल है। ऐसा विचार करके विचारवान पुरुष यह मूर्छा भाव प्रत्यय खेद को दुख को समाप्त करते हैं, समा लेते हैं, उसको शांत करते हैं। ये अविचार दशा का फल है, हमारी मूर्छा है कि वर्तमान दुख का कारण भावी दुख का कारण। आत्मा को आत्मा के स्वरूप से साधना से दूर ले जाने वाले परिणाम है। सबसे जो बड़ा नुकसान है कर्म बंधेगा, इसका फल तो भविष्य में आएगा, लेकिन पारमार्थिक नुकसान को अगर समझे तो वो है कि हमारा जो स्वरूप है उसके समीप हमें जाना है, हमारी साधना को हमें करना है, उससे विराधना के ये परिणाम। स्वरूप की विराधना है ये नहीं। ऐसा जान करके दुख को क्षमाते हैं, अथवा बहुत करके इस प्रकार का खेद उसे नहीं होता। जो विचारवान जीव है उसको प्राय इस प्रकार का खेद नहीं होता है, उसको विचारना में लगता है, वैराग्य में आता है। किसी भी रीति किसी भी प्रकार से ऐसा खेद का जो सांसारिक दुख होता है, किसी भी प्रकार से इस प्रकार का खेद का दुख का हितकारीपना देखने में ये दुखी होता दुख होना अच्छा है। वो तो किसी भी पहलू से उसका अच्छा पड़ा हितकारी पड़ा देखने में सर्वथा अहितकारक है, निश्चय से भी और व्यवहार से भी, वर्तमान में भी काल में भी, सभी पहलुओं से ये अहितकारक है। और बना हुआ प्रश्न का निमित्त है, इसलिए ऐसे अवसर में ऐसे प्रसंग में विचारवान पुरुष को तो जीव को हितकारी ऐसा खेद उत्पन्न होता है। फिर से मेरे पुत्र बहुत अच्छा है, इस विषय का यह पुत्र बहुत अच्छा है। इस अवसर में विचारवान पुरुषों को जीव के हितकारी ऐसा खेद उत्पन्न होता है, ऐसा दुख उत्पन्न होता है जो जीव को हितकारी हो, हितकारी हो मैंने और वैराग्य में ले जाए और पुरुषार्थ में ले जाए और तीव्रता में आ जाए आत्म कल्याण के विषय। तो ऐसा प्रसंग तो उसको बाहर में जो खेद का प्रसंग निमित्त है तो उसको डाइवर्ट कर देते हैं, आत्म कल्याण अधिक तौर से अधिक प्रकार से तो साथ में। जैसा एक कुटुंब प्रतिबंध है, एक कुटुंब प्रतिबंध छूटने का ये अवसर है। कुटुंब प्रतिबंध होता है उसके सदस्यों के जो लगाव है तो वो आत्मा को आत्मा में जाने के लिए अवरोध है। अच्छा, बड़ा अवरोध है। इस अवरोध मिटाने का ये प्रश्न है। ऐसा अवरोध मिटा देने का ये प्रश्न, ऐसा के रूप में होता है। इस प्रकार का उपयोग होता है। सर्वसंगता अशरणपना एवं नवपना अनित्यपना और तुच्छपना और अन्य को पना देख करके अपने को विशेष प्रतिबोध होता है कि हे जीव, अरे जीव, तेरे में कहीं भी इस संसार के विषय, इस संसार में उदय के कारण से, उदय भाव से भी अब भी कुछ मूर्छा वर्तती हो तो उसका तो त्याग कर दे, त्याग कर दे। बहुत सुंदर विचार ऐसा प्रश्न बनेगा भी, हरेक को बनेगा, किसी को नहीं बनेगा सो बात नहीं आएगी। तो सर्वसंग का शरण पड़ा है, कोई शरण होने वाला सरल होना मैंने बचा लेना है। कोई बचा सकता है क्या? ऐसे प्रसंग से हमें कोई बचा सकेगा क्या? विश्व में कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है, देव हो, राजा हो, कुछ भी हो, उनको ये प्रसंग है, उस विषय में वो कोई उसको बचा सकता नहीं। और बद्धव पड़ा, कोई मदद करने वाला, मतलब मैंने भाई भाई लोग मदद करते, आजकल ऐसा नहीं है लेकिन नाम ऐसा पड़ा है कि कोई तकलीफ आ गई भाई लोग मदद करते हैं। आजकल दूसरी बात हो गई है, अब तो वैर वैमन्य से भाई लोग में ज्यादा होता है, किसी को नहीं होता है उतना भाग्यशाली समझ लेना। अगर आजकल तो भाई लोग में वैर वैमन्य से ज्यादा रहता है, देखा देखी ज्यादा रहता है और द्वेष भी ज्यादा रहता है आपस में। मित्र को कहते हैं, मित्र को भाई बहन, हमारे गुजराती में भाई बहन यानी मित्र। तो भाई जैसा बंधन, भाई मदद करता है, मित्र भी मदद करता है, उसके साथ कैसा संबंध है, बंध मैंने संबंध भाई जैसा, तो उसको भाई बंध कहते हैं। गुजराती में भाई बहन ऐसे ही कहते हैं। संसार में ऐसे प्रसंग में कोई मदद कर सकते, किसी की मदद काम में नहीं आती। कोई दवाई ले आवे, कोई डॉक्टर ले आए, कोई पैसा दे दे, अलग बात है, लेकिन कोई प्रसंग मिटा सकता नहीं है। इसलिए ए बंधव पड़ा है, ऐसे प्रश्न लिए बिना ऐसा प्रश्न तो प्रसंग नहीं आया है।
इस तरह का प्रसंग अगर कोई मुक्ति को समझ में नहीं आ रहा है और प्रसंग पुरुष अगर ज्ञान अगर ध्यान आकर्षित करें और जो मनुष्य है वो सतपुरुष से मार्गदर्शन ले और उसको अगर ऐसा विश्वास है कि अगर वो मार्गदर्शन देंगे तो उसका ये प्रतिबंध जो कारण है वो दूर हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में सतपुरुष निमित्त नहीं पड़ सकते।
पत्र क्या है जो आप कह रहे हैं? वो बात आपने कही, यही कृपालु देव तो कर रहे हैं। कृपालु देव का परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष होते तो बोल बोल के करते, और परोक्ष है तो लिख के कर रहे हैं, वो वमाणिया से लिख रहे हैं, तो ये बात का मुमुक्ष है। तो परोक्ष है तो पत्र लिख रहे हैं, और वही कर रहे हैं कि आपको आपका कुटुंब प्रतिबंध छोड़ देना, बस उतनी सी बात है। संक्षेप तो उसका उतना ही है कि समझदारी से, सही ज्ञान से और सही परिणाम से जो कुटुंब प्रतिबंध है वो छुटना चाहिए। तो यही तो कर रहे हैं, तो फिर यही कर रहे हैं, पत्र लिखकर वो ही कर रहे हैं। आश्वासन तो बता आपे, दिलासो तो बता आपे छे, तो सामान्य मानस दिलासो आपे, पर सत्पुरुष दिलासो आपे तो फरक पड़े।
अर्थी बात तो आने हाजरी की बोली है, इन्हीं बात तो ये आवे तो रहे उन्हें बुद्धि से है।
बहुमान के परिणाम में वो आधा तो होता है, जो भी कहेंगे वो ध्यान से सुनेगा, तो प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, अपना सब जब तो उनको दोनों का समझ है, वरना दोनों का समझ भी क्या, जिसको तीव्र दुख हो जाता है उनको तो सुनने की जगह ही नहीं, वो तो उतना धकेल जाता है कि उसको कोई कुछ भी सुनाए इसके असर नहीं आते, ऐसा नहीं हो जाता है किसी को, वहां तो कोई उपाय नहीं। जैसे पानी में दो तरह से डूबना होता है, एक भीतर 20-25 फीट भीतर में कोई डूबता है उसको तो बचाने का कोई इलाज नहीं, डूब के मर जाए, क्योंकि कौन जानता है वो डूबता है, और वो भी किसको पकड़ेगा, तो भीतर में बह रहा है पानी, लेकिन जो सपाटी पर डूबता है उसको उसको बचाता है, कि कोई ना कोई उसको बचाने वाला मिलता है, कोई लकड़ा होली कोई तो भूमि तो भी कुछ अवस्था में कामयाब होता है, कुछ अवस्था में भूमि का निर्मित बना है। ऐसे प्रसंग में कोई बहुत दुख में डूब जाता है तो उसको तो कुछ सुनाई देगा ही, कोई बात करेंगे तो सुनो, कोई ये व्यवहार है इसलिए वो बोलते हैं, लेकिन मुझे कितना दुख हो रहा है वो तो मैं जानता हूँ, वो मेरे स्थान में नहीं, वो क्या समझेगा, तो वो तो दुख से बात नहीं कर पाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा भी विचार वहाँ है का है उनको कोई अच्छा संग मिल जाए, सबको सुन जाए, उनकी जो वृत्ति है चढ़ जाए, ऐसा ही कुछ ये तो ऐसा प्रतिबोध होता है। अनित्यपणा नित्य संयोग रहता है, तुच्छपणा क्या कीमत है इस बात की, आत्मा का जो आत्मिक सुख शांति है, जो परमार्थ मार्ग है, इसमें व्यवहारिक समझ की क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं। जैसे तुच्छ वस्तु खो जाती है तो हमको कुछ नहीं लगता है, ऐसे ये संबंध को ही तुच्छ था, तो युगान युग प्रारंभ योग था, तो मिले बात तुच्छता जान करके और अन्यत्व में भिन्नपणा देख करके उनको विशेष प्रतिबोध होता है कि अभी इस जीव में कोई भी उदय भाव से मूर्छा का परिणाम हो जाए तो वो छोड़ देना, ऐसा मूर्छा का परिणाम करना जो व्यवहारिक संबंध है उसको व्यवहार निकालो, जो व्यवहारिक जिस प्रकार का व्यवहारिक संबंध है उस प्रकार का व्यवहार निकालो, लेकिन अपनत्व की मूर्छा करना बहुत बड़ा कर्मबंधन का और दुखदायक प्रसंग है, तो दुख बहुत दुख में जाने का ये रास्ता भयंकर होता है।
व्यवहारिक संबंध निवाले ऐसा आया तो व्यवहारिक संबंध निवाले उसका क्या मतलब,
इसको नहीं आया
नहीं आप बोला था जो व्यवहारिक संबंध है वो निवाले अपनत्व नहीं करना,
व्यवहारिक संबंध में क्या के भाई है तो भाई जैसा संबंध निभाता है, बेटा है तो बेटा जैसा समझ में आता है, पिता है तो पिता जैसा निभाता है, ऐसा जैसा भी समझ तो एक परिवार में एक सा समझ तो नहीं होता, हर एक के साथ अलग अलग संबंध होता है, जिस स्तर का संबंध हो उस स्तर का व्यवहार निभाना,
व्यवहार
ठीक है बात खत्म। जैसे आपके परिवार में कोई हो तो उनके लिए जो भी आपको व्यवहारिक तौर से करना चाहिए वो करना, उसमें ऐसा नहीं करना वो बात नहीं है, लेकिन मूर्छा खा के नहीं, मेरे हैं ऐसे कैसे ऐसे परिणाम करते हैं।
इतना अंतर मंत्र है के संबंधी भाव
अंतर रखते पर अंतर अंतर में रखने का है, बाहर में नहीं रखने का है।
झगड़ा बाहर में रखेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, बाहर में रखेंगे झगड़ा हो जाएगा,
बाहर में रखने से तो हमारे भी चलेगा और कई प्रकार का क्लेश तो बाहर में संबंध बनाए रखो, अंतर में थोड़ा अंतर रख लो, कोई आपत्ति अगर ये अंतर नहीं रखा तो पूरे डूब जाओगे, दुख में ही डूब जाओगे। दुखी होना है कि सुखी होना है वो पहले निर्णय कर लो।
बड़ा संतुलन रखने का है इसमें,
बस वो जो झगड़ा है वो उस पॉइंट पे
नहीं, अंतर बाहर का संतुलन बना लो, कोई आपत्ति डिसीजन लेने से हमारे परिणामों को खराबी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो अपनी शक्ति को अपनी योग्यता को अपने को देखना है और उस देख करके डिसीजन लेना है, कोई नियत नहीं, क्योंकि योग्यता समय समय की, एक जीन की भी योग्यता एक सी तो होती नहीं है, समय एक सा प्रसंग भी होता नहीं, प्रसंग का भी वजन ज्यादा कम होता है, तो उसमें तो अपना विचक्षणता है, और अपना विचक्षणता में भी अपना आत्महित करने का दृष्टिकोण जितना तीक्ष्ण है, पहनी अपनी स्मृति उतना ही वो डिसीजन राइट आएगा, अपना डिसीजन बन जाएगा।
यही तो सम्यक ज्ञान का मूलभूत कोई टेक्निकल साइड है। सम्यक ज्ञान की कोई ज्ञान की कोई मूलभूत टेक्निकल साइड है तो वो है कि जीवन में संसार में दुनिया में अनेक प्रसंग बन सकते हैं चित्र विचित्र प्रकार के, उसमें हमें सही एंगल से सही डिसीजन लेना है, राइट एंगल से राइट डिसीजन हमारा होना बनता है।
प्रश्न उनका यह है कि मुमुक्षुता की भूमिका में,
तो मुमुक्षुता की भूमिका में यथार्थता आती है, ज्ञानी की भूमिका में सम्यक ज्ञान है, और यथार्थ समझ ही डेवलप होकर के सम्यक ज्ञान में परिणमित होती है। तो सम्यक ज्ञान की पूर्व भूमिका क्या? यथार्थ समझ। यथार्थ समझ माने क्या? कि हर प्रसंग में हर कार्य में हमारा सोचने का डिसीजन लेने का राइट एंगल हो, यही यथार्थ समझ है।
कैसे डिसीजन में हमारे परिणाम बेटर रहेंगे?
हाँ, हमारी योग्यता क्या, प्रसंग का तो कितना तुल देना कितना तुल नहीं देना, इधर तुल कितना देना उधर तुल कितना देना, इसका जो नाप आना, और आत्मकल्याण को हमारे आत्महित की मुख्यता में वो रहकर के उसका जो डिसीजन लेना है, ये इसका राइट एंगल है। राइट एंगल तो वही है कि हमारा जो ध्येय है उसके प्रति हम जाना चाहते हैं, हम डिसीजन चाहे कुछ भी लो, इधर का लिए उधर का लिए, हमारा जो प्रयाण है उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है, हमारा ध्येय से प्रति आगे बढ़े और इसमें हम पीछे नहीं घूम जाए। बस ये दृष्टिकोण जिसकी मजबूत है उसको प्रयोजन की दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, तो उसको विवेक आ जाता है हर तरह के अंतर्बाह्य में, अंतरंग का भी विवेक आएगा, माय का भी विवेक आएगा, ऐसा ही नहीं।
उसमें उसमें तो फिर खुद के परिणाम और खुद की योग्यता की तरफ ही ज्यादा ध्यान रहेगा, दूसरे के परिणाम और दूसरे की योग्यता पर ध्यान नहीं जाएगा।
हाँ, नहीं जाएगा, ऐसा होता है कि ऐसा भी बनता है कि अगले का कुछ भी हो जाता है परिणाम बिगड़ जाता है, लेकिन अपना नहीं बिगड़ता है, तो उसमें अपने को आपत्ति नहीं है। जैसे कोई महाज्ञानी मुनि दशा में प्रवेश करते हैं, चक्रवर्ती जैसे भी, तो क्या इनके परिवार वाले राजी होते हैं क्या? दुखी नहीं होते क्या? शास्त्र में ऐसे कथन आते हैं, इतने विलाप करते हैं, विलाप इतने विलाप करते हैं कि चक्रवर्ती की जो रानियां हैं ना वो बाल खींच लेती है, इतने विलाप करती है, बाल खींचने लगती है, निकाल देती है, खींच कर
जुड़ती है, जुड़ के
नौजवान हो जाए इतना विलाप होता है, लेकिन उनको छुट गया परिणाम, क्या छुट गया? क्या वो मुनि कठोर हो गया क्या, निर्दय हो गया क्या? ऐसा उनका रस खत्म हो गया है, तो हाथ जोड़ के बोले जहां तक मेरे परिणाम लगे हुए थे वो मेरी कमजोरी से लगे हुए थे, आपके कारण से नहीं, आप हमारे संग में हो इसलिए हमारा राग नहीं था, राग तो हमारी अयोग्यता के वश था, वो हमारा राग छूट गया है, क्षमा कर दे, तुमको दुख अवश्य होगा, मैं समझता हूं कि तुमको दुख होगा, लेकिन जब मेरा राग नहीं रहा तो मेरे लिए मेरा कोई उपाय नहीं है क्या? राग जबरन लाना ये कोई मेरा भी उपाय नहीं है, मेरे आत्मा में मेरे ऐसा परिणमन करना, जब मेरी वितरागता हो गई है, मुझे रस नहीं आता है, मैं संबंध से देख ही नहीं सकता हूँ कि यह संबंध है मेरा, तेरा मेरा यह संबंध वो देख ही नहीं सकता, तो क्षमा कर देना, मेरे से उसका हो सकता नहीं है, मैं क्या करूँ, जब हो ही नहीं सकता है तो मैं क्या करूँ, तो अगले का परिणाम कितना भी बिगड़े ये निर्दोष है, खुद निर्दोष है, इसलिए अगले का परिणाम कितना बिगड़ेगा ये आधार लेने की चीज नहीं। हाँ, उतना हो सके, कोई अल्टरनेटिव बैठता हो और इसका परिणाम नहीं बिगड़ता हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारा भी नुकसान हो जाता हो ना ममत्व के कारण जो परिणाम बिगड़ता है तो उसका दुख लगेगा, तो इसका परिणाम बिगड़ेगा तो हमारा बिगड़ जाएगा, तो क्यों? तो ममत्व है, तो ममत्व है उसका दुख है, ये दुख तो किसका है? ममत्व है इसका है, तो इनका दुख हो मेरा दुख, वो दुखी को मैं दुखी, इसका दुख मैं नहीं दे सकता, इसलिए वो दुखी, ऐसी बात। तो ये हरेक के प्रति जीवन में ये बात बनने वाली है, बनती भी है, लेकिन उसमें कैसे विवेक करना, किस प्रकार से करना, वो अपना आत्मकल्याण को मुख्य रख करके उसका विवेक होता है। विवेक होता है तो आत्महित को मुख्य रखने से ही विवेक होता है, इसको गौण करने से विवेक नहीं होता, डिसीजन राइट नहीं आएगा, डिसीजन फेल जाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, इस प्रकार से मूर्छा का त्याग करने का भाव ऐसे प्रसंगों में विचार मन को आता है, वो अपने आप को प्रतिबोध करता है, इसलिए ये मुझे आया है, फिर मूर्छा छुड़ाने के लिए आया है, मूर्छा छोड़ दे और बात नहीं करें।
अंत करो श्री सद्गुरु देवलो जय हो, कृष्ण मूर्ति भगवती मातलो जय हो।